प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। मित्रों, आज 21 अक्टूबर 2016 है और आज के इस AFEIS.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप सबके साथ ही मैं स्वागत करता हूं अपने उन एक नौजवान साथी का भी जिन्होंने एकेडमी की अगले साल फरवरी मार्च में होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इन साथी का नाम है रोहन पाल, जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से हैं। तो रोहन, मैं एकेडमी की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको मालूम है कि आज शुक्रवार है और शुक्रवार के बाद शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आता है, तो सोमवार को ही मैं सीधे सीधे आपके सामने हाजिर हो सकूंगा। लेकिन कुछ सूचनाएं जो मैं जनरली हर फ्राइडे को देता हूं वो ये है कि कल सैटरडे को आपको पेपर क्लिपिंग्स पढ़ने को मिलेंगी, साथ ही साथ कुरुक्षेत्र और योजना पत्रिका हिंदी और इंग्लिश के आप लोगों को आर्टिकल्स भी पढ़ने को मिलेंगे। स्टूडेंट्स को हमारे जो स्पेशल ऑडियो गाइडेंस है वो भेजा जाएगा। और दोस्तों, इसके साथ ही साथ जो वीकली क्वेश्चन जो आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं वह भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो मित्रों, अब इस छोटी सी रूटीन सूचना के बाद, जिसे आप साप्ताहिक सूचना कह सकते हैं, अब मैं आता हूं न्यूज एनालिसिस पर। तो हम सबसे पहले आते हैं दोस्तों, हमेशा की तरह ही आकाशवाणी समाचार पर। आपने आकाशवाणी की न्यूज सुनी ही होगी और उसमें केवल दो ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कह लीजिए, पॉइंट्स तो मैं नहीं कहूंगा, वो मुझे दिखाई दिया दोस्तों। एक तो देखा आपने कि सार्क देशों को लेकर के भारत का एक स्पेशल रुख आपको न्यूज में दिखाई दिया होगा। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सार्क संगठन जो है उसके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो डेफिनेटली आपके जो इंटरनेशनल रिलेशन का जो पोर्शन है, मैं बार बार जब भी मौका मिलता है आप लोगों को याद दिलाने की कोशिश करता हूं कि जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस के सिलेबस की बात करते हैं, हालांकि आप जब सिलेबस पढ़ेंगे तो उसमें उसकी थोड़ी सी डिटेलिंग भी दी गई है, लेकिन जो पिछले 3 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको देखने के बाद एक इम्प्रेशन बनता है कि ज्यादातर जो क्वेश्चन हैं वो हमारे जो पड़ोसी देशों के साथ संबंध रहे हैं उन्हीं से जुड़े हुए होते हैं। और चूंकि सार्क देश के जो सार्क संगठन के जो देश हैं वो हमारे पड़ोसी देश हैं, इसलिए सार्क संगठन हमारे लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। और मैं इससे पहले भी आपको इसी सप्ताह ये बात बता चुका हूं कि सार्क, आसियान और बिम्स्टेक्स और साथ ही साथ ब्रिक्स, ये 4 देशों में यूं कह लीजिए कि भारत ने अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है, बहुत अच्छे तरीके से स्थापित किया है। इन देशों के साथ इसके संबंध बहुत ही बेहतर हुए हैं और डेफिनेटली इसका प्रभाव, एक सकारात्मक प्रभाव भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर पड़ेगा। और अभी भारत जो एक आतंकवाद के मुद्दे को लेकर आगे चल रहा है और उसमें पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश में लगा हुआ है विश्व की बिरादरी से, उसमें भी निश्चित रूप से इन 4 देशों के संगठन की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मित्रों, इसी सीधे सीधे इसी टॉपिक सार्क को लेकर के ही तो नहीं, लेकिन इस मुद्दे को जिस पर मैं अभी बात कर रहा हूं उसी मुद्दे को लेकर के एक बहुत अच्छा आर्टिकल हिंदुस्तान, कल के दैनिक हिंदुस्तान के एक पेपर में आया है। और वो लेख हमारा जो लिखा है वो इंडियन फॉरेन सर्विस के हमारे ऑफिसर हैं शशांक जी, हमारे पूर्व विदेश सचिव रहे हैं, उनका लेख है। उसमें उन्होंने 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं कि भारत वैसे तो सभी देशों के साथ बहुत बेहतर स्थिति में है, लेकिन चीन और रूस थोड़े से अलग तरीके से चल रहे हैं। और उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है कि रूस का अपना क्या इंटरेस्ट है और चाइना का अपना क्या इंटरेस्ट है। और फिर उन्होंने बताया है कि कैसे भारत चीन और रूस को अपने पक्ष में ला सकता है। तो कुछ बहुत ही उन्होंने बड़े खूबसूरत 2-3 पॉइंट्स दिए हैं। मैं जानबूझकर वो पॉइंट्स आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस लेख को आप पूरा पढ़ें ताकि जो बातें हैं, जो 2-3 पॉइंट हैं, उनको आप एक विस्तृत संदर्भ में समझ सकें। मित्रों, सिविल सर्विस की तैयारी के लिए मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मालूम पड़ती है, इसलिए मुझे इस बात के लिए माफ कीजिएगा कि मैं आप लोगों को टिप प्रोवाइड करने की भाषा में चीजें उपलब्ध नहीं करा पाता, आप लोगों से बात भी नहीं कर पाता। तो मैं जानबूझ करके आपको वो पॉइंट्स नहीं बता रहा हूं। प्लीज आप इस आर्टिकल को पढ़ें और फिर उसमें से खुद ही उसके पॉइंट्स निकालें, आपके लिए बेहतर रहेगा। मित्रों, जो दूसरी खबर थी आकाशवाणी की, वो खबर थी साइबर सुरक्षा को लेकर। आपने एक न्यूज जो हेडलाइन खबर ही थी कि पढ़ी कि किस तरीके से बैंक के डेटा की चोरी होने के कारण लगभग कई बैंकों ने लगभग 32 लाख डेबिट कार्ड अभी ब्लॉक कर दिए हैं। उसको लेकर के इकोनॉमिक टाइम्स ने एक एडिटोरियल कमेंट भी लिखा है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। और आज के जो अखबार हैं उनकी भी ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। और दोस्तों, मुझे खासकर अखबारों में जिस तरह से इस खबर को महत्व दिया गया है और पहले ही दिन एडिटोरियल कमेंट आने लगे हैं, उसको देखते हुए अब ऐसा लग रहा है कि जो साइबर सुरक्षा का जो टॉपिक है, आपके सिविल सर्विस मेंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है कि वो बन गया है। आप के सिलेबस में भी, जो आपके सिलेबस का जनरल स्टडीज का जो थर्ड पेपर है, उसमें बकायदे सिक्योरिटी की बात कही गई है, जिसमें इंटरनल सिक्योरिटी है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी है और उसी में ही साइबर सिक्योरिटी भी है। और चूंकि साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी घटना ये हुई है, तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। तो प्लीज आप सब इस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हुए इस पर एक बैकग्राउंड अच्छे से इस टॉपिक पर तैयार कर लें, और साथ ही अब इस बात का ध्यान रखें कि इससे रिलेटेड यदि कोई भी घटना घटती है, कोई भी आर्टिकल्स, एडिटोरियल कमेंट्स आते हैं, तो उन्हें ध्यान से पढ़ें और उन्हें नोट भी करते जाएं। बेहतर होगा कि आप अपने रजिस्टर के 2-3 पेज साइबर सुरक्षा टॉपिक के लिए सुरक्षित कर लें, क्योंकि मित्रों इसकी शुरुआत तो देखिए हालांकि इकोनॉमिक सेक्टर से हुई है, बैंकिंग सेक्टर से हुई है, लेकिन आप जानते हैं कि इसे किसी भी सीमा तक फैलाया जा सकता है, डिफेंस या दूसरे। और वैसे भी आपको मालूम है कि यदि किसी देश पर आपको अटैक करना है तो आप उसकी इकोनॉमी को नष्ट कर दीजिए, वो देश नष्ट हो जाएगा, और बैंक जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होते हैं। यह बताने की मुझे जरूरत नहीं है, 2008 में जो अमेरिका में इतनी जबरदस्त आर्थिक मंदी आई थी, उस मंदी की शुरुआत बैंकों के फेल होने से ही थी। अब बैंकों का फेल होना केवल इसी बात पर निर्भर नहीं करता है कि बैंकों को बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान हो गया है, बल्कि अगर आप उसके पूरे सिस्टम को किसी भी तरीके से अगर खत्म कर सकते हैं, तो वह भी आप यही मान करके चलिए कि बैंक कलेप्स कर गए हैं। और जब बैंक कलेप्स कर जाते हैं तो देश की पूरी इकोनॉमी कलेप्स कर जाती है, और अगर देश की इकोनॉमी कलेप्स कर गई तो फिर उस देश की क्या स्थिति हो सकती है, किसी भी देश की क्या स्थिति हो सकती है, आप समझ सकते हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि हालांकि ये अभी साइबर सुरक्षा का जो प्रश्न है ये अभी बैंक सेक्टर से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे एक तरह से नेशनल सिक्योरिटी का ही मुद्दा मामला बन जाता है। तो प्लीज मित्रों, आप इस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हुए अब आप अपने नोटबुक में इसके लिए स्थान सुरक्षित कर लें। दोस्तों, न्यूज से तो इतना ही। न्यूज पेपर पर मैं अब आता हूं, 2 टॉपिक न्यूज़पेपर्स के मैं आपको बता चुका हूं, अब मैं एक बहुत ही तीसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आप लोगों से आज बात करने जा रहा हूं, जिसकी शुरुआत मैंने कल के ही अपने डेली ऑडियो लेक्चर में कर दी थी। और दोस्तों, वह टॉपिक है खासकर डिप्लोमेटिक रिलेशंस में आर्ट, लिटरेचर, कल्चर, इन सब को शामिल करना, सबको शामिल करना इस रूप में न ले बल्कि उन पर प्रतिबंध लगाना, हम इससे इस रूप में ले तो ज्यादा अच्छा है। शामिल तो ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस के तहत होते ही हैं, अगर सकारात्मक रिलेशन चल रहे हैं तो ये बहुत जबरदस्त इनपुट प्रोवाइड करते हैं रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के लिए। खासकर इसका जो संबंध है, आप समझ गए होंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी जो रिलेशंस चल रहे हैं, खासकर उड़ी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान एक दूसरे पर आप देख रहे हैं कि तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, कौन कितना सही है, सब अपने अपने को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस चल रहे हैं, जिसमें निश्चित रूप से खुशी की बात है कि भारत को बेहद सफलता भी मिल रही है। लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष है, जिसे मैं आज आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं दोस्तों, वह है कि कलाकारों पर प्रतिबंध लगाना कितना सही है। कुछ आर्टिकल्स मैंने आपको कल प्रोवाइड किए थे, कुछ आर्टिकल्स मैं आज भी प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसमें हिंदू के भी आर्टिकल्स हैं और इंडियन एक्सप्रेस के भी आर्टिकल्स हैं। दोस्तों, आर्टिकल्स आप पढ़ेंगे और उसके आधार पर अपने लिए पॉइंट्स तैयार कर लेंगे। मैं आपको थोड़ा सा इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड प्रोवाइड कर दूं, या यूं कह लीजिए कि इस टॉपिक का बैकग्राउंड नहीं कहना चाहिए, इस टॉपिक का मैं आपको सिनेरियो बताना चाहूंगा कि इस टॉपिक पर किस किस एंगल से आपको सोचना चाहिए और पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए। मित्रों, जब हम कला साहित्य संस्कृति पर नियंत्रण की बात करते हैं, अगर भारत के संदर्भ में बात करते हैं, तो देखिए दो स्थितियां बिल्कुल हमारे सामने स्पष्ट होनी चाहिए। पहली स्थिति है सरकार के द्वारा नियंत्रण लगाया जाना, जहां गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, सत्ता इन्वॉल्व होती है ना, गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती, चाहे फिर वो भारत सरकार हो या राज्य सरकारें हो, या टू सम एक्सटेंट आप कह लीजिए कि सेंसर बोर्ड ही क्यों ना हो, है ना, सेंसर बोर्ड भी गवर्नमेंट की संस्था है ना, वो कोई प्राइवेट एजेंसी नहीं है। तो हम इन तीनों को एक मान लेते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सेंसर बोर्ड। जो दूसरा जो स्तर है वो स्तर है सोसाइटी। सोसाइटी में आप सभी को ले सकते हैं, जातिगत समुदाय ले सकते हैं, धर्मगत समुदाय ले सकते हैं, और यहां तक कि कुछ राजनीतिक दलों को भी ले सकते हैं, ऐसे राजनीतिक दल जो उस समय सत्ता में नहीं है। देखिए, अगर राजनीतिक दल सत्ता में है तब राजनीतिक दलों द्वारा, उस राजनीतिक दल द्वारा किया गया विरोध कहीं ना कहीं सत्ता से जुड़ा हुआ विरोध मान लिया जाता है, लेकिन प्योरली आप नहीं मानेंगे कि यह गवर्नमेंट का स्टैंड है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी कुछ कहा नहीं है, राजनीतिक दल के कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो ये बहुत क्लियर कट है। ये जो प्रतिबंध है ये इंटरनल है, यानी कि जब हम देश के ही कलाकारों के प्रति या कला के प्रति या किसी अभिव्यक्ति के प्रति देश के ही लोगों के द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता है। आपने देखा होगा कि ये, सुना भी होगा कि ये कोई नई बात नहीं है, ये लगातार चलता आ रहा है। मतलब ये मत समझिए कि कुछ अभी साल दो साल से ऐसा हो रहा है या 10-20 साल से ही ऐसा हो रहा है, आजादी के बाद से ही ये स्थिति लगातार आपको दिखाई देगी। और ये भी बता दूं कि केवल भारत की ये स्थिति नहीं है, ये ज्यादातर देशों की स्थिति है, और यहां तक कि इसमें डेवलप्ड कंट्री भी शामिल होते हैं। और उसका कारण बहुत सिंपल सा ये होता है कि सरकार को जब ये लगता है कि इस अभिव्यक्ति के कारण, या मान लीजिए ये फिल्म अगर रिलीज हो गई तो, ये किताब अगर लोगों को पढ़ने के लिए मिल गई तो, या इस नाटक का प्रदर्शन हो गया तो, या यह चित्र प्रदर्शित कर दिया गया तो फिर उसको क्या लगता है कि कुछ लोगों की भावनाओं को ठेस लग जाएगी, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सबसे ज्यादा सरकार की चिंता जो होती है वो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम को लेकर होती है, कि कहीं ऐसा ना हो कि दंगे भड़क जाएं, कुछ और संकट पैदा हो जाए। राजनीतिक सत्ता की जो दूसरी चिंता होती है मित्रों, नो डाउट कि एक डेमोक्रेसी में वोटों की चिंता तो होती ही है, क्योंकि सत्ता का आधार ही वोट होते हैं, यानी कि लोग होते हैं। अगर इसको कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज में बात करें तो आप कह सकते हैं कि लोगों की इच्छा होती है, तो उसको भी राजनीतिक दल अपने ढंग से देखते हैं। तो इसकी बहुत पुरानी समय से ये चली आ रही है, आजादी के बाद से ही आपको दिखाई देंगी कि एक, मुझे ध्यान आ रहा है 1988 के आसपास गोविंद निहलानी का एक टीवी सीरियल आया था तमस, जो भीष्म साहनी के उपन्यास पर आधारित था, भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय की घटना, और बहुत ही खूबसूरत उपन्यास था। उस समय भी लेकर के बहुत सी बातें हुई आपको, माय नेम इज खान फिल्म को लेकर के आपको इस तरह की चीजें, मतलब ऐसी बहुत सी लिस्ट है, वो आप देख सकते हैं। ये तो फर्स्ट स्टेप हुआ। जो दूसरा स्टेज होता है वो होता है जब दो देशों के बीच तनाव हो रहे हैं, दो देशों के बीच तनाव, जैसे अब हम वर्तमान में अब आ जाते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, राइट। तो अब आप देखिए कि जो सबसे मजेदार बात है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव है, अभी तक भारत सरकार ने पाकिस्तानी कलाकारों पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, भारत सरकार का कोई स्टेटमेंट नहीं है। सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट की दृष्टि से आपके दिमाग में ये चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए, सरकार का कोई स्टैंड नहीं है। वो बिल्कुल नहीं कह रही है कि आप पाकिस्तानी कलाकारों को बाहर भेजिए, या उन्होंने उसने घोषणा कर दी हो कि जो पाकिस्तानी कलाकार हैं वो भारत छोड़ करके चले जाएं। नौ सरकार ने कहा है कि फिलहाल पाकिस्तान ऐसी फिल्में जिनमें पाकिस्तानी कलाकारों ने काम किया हो रिलीज नहीं की जाएंगी, या सेंसर बोर्ड ने ऐसी फिल्मों को पारित करने से रोक दिया हो, ऐसी कहीं कोई बात नहीं हुई है। बल्कि कल ही फिल्म के कुछ लोग, फिल्म महाराष्ट्र के जब चीफ मिनिस्टर से मिले तो चीफ मिनिस्टर ने यही कहा कि नहीं, आप ऐसी फिल्मों को रिलीज कीजिए, हम आपको सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे। यानी कि आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इसमें सरकार का अभी कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो फिर मामला है क्या? तो अब आप उस दूसरे पक्ष को ले लीजिए जिसकी चर्चा अभी मैंने की थी, वो है समाज। व्यापक रूप में समाज में कह रहा हूं, चाहे उसमें कुछ राजनीतिक दल के लोग हों, चाहे उसमें किसी संगठन के लोग हों, सामाजिक संगठन के लोग हों, या कलात्मक संगठन के लोग हों, या इंडिविजुअल हों, उसमें कोई भी हो सकता है, उसमें आप समाज को ले लें। उन्होंने यह बात कही है कि जो कलाकार हैं पाकिस्तान के, वो देश छोड़ करके चले जाएं। फिर उन्होंने ये भी बात कही कि जिन फिल्मों में उन्होंने काम किया है उनका प्रदर्शन न किया जाए, और अगर प्रदर्शन होंगे तो कुछ भी हो सकता है, हम प्रदर्शन के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। जिसमें अभी आप देख रहे हैं कि जो बहुत चर्चित फिल्म है करण जौहर की, ए दिल है मुश्किल, जिसकी चर्चा अभी खूब हो रही है, और यहां तक कि आप देखेंगे कि एक बॉम्बे में अभी एक फिल्म फेस्टिवल होना था, उसमें पाकिस्तान का एक क्लासिक है जागो हुआ सवेरा, वो फिल्म दिखाई जानी थी, तो उसको, उस फिल्म के प्रदर्शन को ड्रॉप कर दिया गया कि नहीं, इस फेस्टिवल में ये फिल्म नहीं दिखाई जाएंगी। इस तरह की चीजें जो हो रही हैं उसमें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये केवल भारत की तरफ से नहीं हो रहा है मित्रों, इससे भी पहले पाकिस्तान के जो फिल्म समुदाय था उसने अपने यहां भारतीय फिल्मों को प्रदर्शित करने से रोक दिया था। वहां के एसोसिएशन का नाम है द पाकिस्तान मोशन पिक्चर एसोसिएशन, और दूसरा था पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। मतलब इसमें इन्होंने रोका और बाद में भारत में ये प्रतिक्रिया हुई। तो दोस्तों ये सिनेरियो है, यानी कि इसमें सरकार नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो किस रूप में होना चाहिए, किस रूप में नहीं होना चाहिए, आपको इस पर विचार करना होगा, राइट? अब आप देखिए कि फिर इसमें एक जो मुद्दा आ जाता है, जो एक इमोशनल मुद्दा आ जाता है, वो है पेट्रियोटिज्म का, राष्ट्रभक्ति का, कि अगर पाकिस्तान और भारत के संबंध इतने ज्यादा तनावपूर्ण हैं तो कलाकारों को भी फिर अपने सरकार की नीतियों में साथ देना चाहिए, या आप एक पॉइंट ले सकते हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट आप ले सकते हैं कि नहीं, कलाकार तो सच पूछे तो राजनीतिक स्थितियों से ऊपर होते हैं, बल्कि कलाकार तो वो ब्रिज हैं जो दोनों देशों के लोगों के बीच एक पुल का काम करते हैं, दोनों देशों में एक संवेदनात्मक समझ, एक सेंसिटिविटी का ब्रिज तैयार करते हैं। तो अगर राजनीतिक तनाव ऊपर बहुत अधिक है तो कहीं ना कहीं ये जो संवेदनात्मक ब्रिज है यह उस तनाव को कम करने का काम करता है, उसको मिटिगेट करता है, और ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज होती है। और यहां तक होता है कि यदि मान लीजिए कि पाकिस्तान के कलाकार बहुत ज्यादा भारत के फेवर में है, या पाकिस्तान के लोग भारत के फेवर में है, तो वो अपनी सरकार पर भी दबाव डाल करके उनकी जो राजनीतिक वैमनस्यता है उसको वो कम कर सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो कलाकार है वो एक तनाव को ढीला करने का ही काम करता है, कम से कम बढ़ाने का काम तो नहीं ही करता है। फिर ये भी कहा जाता है कि भाई जो कलाकार होते हैं वो राजनीति से ऊपर होते हैं। फिर वही दूसरा जो मुद्दा आता है, जो बात मैंने आपसे कही कि जहां देश का सवाल आता है वहां कलाकार भी चूंकि किसी देश का नागरिक है, जिस देश में वो रह रहा है वो अपने देश का नागरिक है, तो उसे ऐसे समय में जो आम नागरिक हैं उनके ही साथ अपने आप को जोड़कर चलना चाहिए। तो दोस्तों ये एक ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आपको अलग अलग तरीके से बात करनी होगी, अलग अलग तरीके से उसको सोचना होगा। अब मैं इसके साथ ही आपको थोड़ा सा एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्थिति बता देता हूं कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। उसमें बहुत साफ तौर पर कहा गया है कि आपको खुद का और दूसरे के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। प्रेस की स्वतंत्रता को अलग से रखा गया है, और उसी में मित्रों ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस पर सरकार उचित प्रतिबंध लगा सकती है, और किन किन आधारों पर वो उचित प्रतिबंध लगा सकती है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए और आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में देख भी लीजिएगा, और ये पॉइंट आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। और वो है भारत की एकता एवं संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध, सार्वजनिक आदेश, नैतिकता की स्थापना, न्यायालय की अवमानना तथा किसी अपराध में संलिप्तता आदि। यदि इसमें से कोई बात राज्य को दिखाई देती है, राज्य मतलब सरकार को दिखाई देती है, तो सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जहां आप अपने तर्क को इस कसौटी पर भी कसकर अपनी बात रख सकते हैं। तो मित्रों, मैंने आपको बिल्कुल ओपन फील्ड दिया है, उसके केवल डायमेंशंस बताए हैं, अलग अलग एंगल्स बताए हैं, ताकि आपके सोचने का दायरा बढ़ सके। मेरा जो पर्पस है वो यही है दोस्तों, कि मैं आपको मछली पकड़ना सिखाऊं, बजाय इसके कि मैं खुद पकड़ करके आपकी थाली में परोस दूं, क्योंकि मेरी परोसी हुई मछली ज्यादा दिन तक आपके काम आएगी नहीं। तो मैंने आपको इस टॉपिक पर यूं कह लीजिए कि मछली पकड़ने के तौर तरीके बता दिए हैं, कुछ रास्ते ओपन कर दिए हैं, दरवाजे खोल दिए हैं कि जहां से आपको क्षितिज दिखाई दे सके, एक व्यापक आकाश दिखाई दे सके, और फिर वहां विचरण करके आप अपने लिए कोई चीज अच्छी सी निकाल सके, तैयार कर सके। तो मित्रों, न्यूज एनालिसिस में बस इतना ही, और अब मैं आता हूं कल के जो मुझे ईमेल मिले हैं उनके ऊपर। तो सभी ईमेल लिखने वाले अपने साथियों के प्रति मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मित्रों, बहुत से मेल के बीच में मैं तीन मेल की एक एक लाइन की चर्चा करना चाहूंगा, जो हमारे फिफ्थ बैच के स्टूडेंट हैं उन्होंने ये मेल लिखे हैं। एक मेल मेरे पास है, वो निहारिका यादव का है, रायबरेली से। उन्होंने लिखा है कि जब वो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देखती थी तो पहले वो बिल्कुल डर जाती थी कि अरे बाप रे ये क्या है, स्पेशली इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को देखने के बाद। फिर उन्होंने लिखा है कि अब इकोनॉमिक्स पर सेशन होने के बाद, यहां इकोनॉमिक्स की 6-7 क्लासेस में इकोनॉमिक्स की बेसिक बताई जाने की कोशिश की जाती है दोस्तों, कि आपकी स्पेशली इकोनॉमिक के सेशन के बाद अब तो इस सब्जेक्ट को हम समझने लगे और इकोनॉमिक अब काफी समझ में आने लगा है। थैंक यू सर। तो निहारिका, आपको भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, जो दूसरा मेरे पास मेल है वो काजल भारती का है, ये भी फिफ्थ बैच की स्टूडेंट रही है, और मुझे याद आ रहा है कि इन्होंने इस बार प्री भी क्वालिफाई किया है और दिसंबर में वो मेंस में अपीयर होंगी। तो सबसे पहले तो मैं आप सबकी ओर से उन्हें इस बात की शुभकामना देता हूं कि वो अपने मेंस में भी बहुत अच्छी सफलता हासिल करें। इन्होंने लिखा है कि सर, मैं इससे पहले क्लास में आने से पहले किसी जब क्वेश्चंस, वीकली क्वेश्चन जो मैं प्रोवाइड करता था, तो उसको लिखने में उनको 12-15 मिनट लग जाते थे, लेकिन अब जैसे ही वो प्रश्न देखती हैं उनको तुरंत उत्तर समझ में आ जाता है। उनके शब्द में आपको बता देता हूं कि पहले क्वेश्चंस लिखने में मुझे 10-15 मिनट लग जाते थे। सर, मैं सोचती हूं कि अगर मैंने भोपाल जाने का डिसीजन ना लिया होता तो क्या मेरे पास इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती। मेरे पास सिर्फ एक दिन का समय था भोपाल जाने के डिसीजन में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, मेरी हमेशा कोशिश रहेगी आपके बताए रास्ते पर चलने की। बहुत बहुत धन्यवाद भावना, और मैं विश्वास दिलाता, भावना बोल गया मैं, काजल भारती, ऊपर भावना भारती के उससे भेजा होगा उन्होंने, सॉरी काजल, कि तुम ऐसा महसूस कर रही हो। और अगर सच में परिवर्तन का दौर शुरू हो गया है तो ये मान करके चलो कि ये परिवर्तन सकारात्मक है और उस दिशा की ओर है जिस दिशा में तुम पहुंचना चाह रही हो। इसके बाद अंतिम मेल मित्रों है ये शैली का। मुझे याद आ रहा है कि शैली मुझे अलग से मिली थी क्लास के दौरान और वो सीआरपीएफ में है, उन्होंने लिखा भी है कि मैं सीआरपीएफ में हूं। उन्होंने लिखा है कि मैं अब तो मेरे पढ़ने का तरीका ही बदल गया, अब तो बोर न होकर और भी ज्यादा समझ में आने लग गया है, मानो मेरे सभी विचार ही बदल गए हों, मेरी दुनिया ही बदल गई हो। शैली, आपको भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और मित्रों, मैं कुछ और दोस्तों के नाम ले रहा हूं, उनके वो हैं कान्हा, जितेंद्र कुमार, रोहित शर्मा, प्रमोद कुमार, अशोक शर्मा, अभिषेक पांडे इलाहाबाद से, राहुल सिंह और रितेश नायक पिथौरा छत्तीसगढ़ से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज का यह डेली ऑडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। 2 दिनों के बाद सोमवार को फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, ढेर सारी बातें होंगी। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा और साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये बीच के 2 दिन आप लोगों के लिए बहुत खुशनुमा हो और बहुत ही उपयोगी हो। नमस्कार, थैंक यू।